السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة الصحابيات حفصة رضي الله عنها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمد للہ، آج ہم ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ ام المساکین زینب بنت خزیمہ کی بھی ہم سیرت آج کمپلیٹ کر لیں. حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کا تعارف ہم کس طرح سے کروائیں؟ ہر طرف سے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کردار ہمیں نظر آتا ہے اور بہترین خاندان. بھلا وہ کس طرح سے تعارف کی محتاج ہو سکتی ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی بہن ہوں، اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جیسے نیک متقی صحابی کی بھانجی، اور زید بن خطاب جو کہ کمانڈر تھے اور شہادت مرتبہ انہوں نے پایا، ان کی بھتیجی حفصہ رضی اللہ عنہا، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ عابدہ، زاہدہ، صائمہ، عالمہ، فاضلہ، ادیبہ، محدثہ، اور سب سے بڑھ کر حارثة القرآن، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ، اتنے بڑے اعزازات ان کو ملے، اور سب سے بڑھ کر جو اعزاز ان کو ملا وہ تھا حارثة القرآن، یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والی. تو بہرحال حفصہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، اور اسی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی کنیت ابو حفص رکھی تھی. جو بڑا بچہ ہوتا ہے، پہلا بچہ، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا، اسی کے نام پر کنیت ہوتی ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی پہلی بیٹی، جس کی بنا پر ان کی کنیت ابو حفص تھی، اور عبداللہ بن عمر جیسے عظیم المرتبت صحابی، ان کی بہن، جن کے لیے اللہ کے رسول نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ نعم الرجل عبداللہ، یعنی عبداللہ بہت ہی اچھا، یعنی نیک بندہ ہے. تو سبحان اللہ، اتنے ان کے بہترین خاندان کے لوگ، ایسے خاندان میں پرورش پانے والی حفصہ رضی اللہ عنہ، ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا ان کا مقام ہوگا اور کتنا ان کا اعلیٰ کردار ہوگا. عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھ سے اگر کبھی کبھی کوئی مقابلہ کیا کرتی تو صرف حفصہ ہی ہوتی تھی، یعنی حفصہ ہی میرے سامنے آنے کی، ایک طرح سے سمجھے ان کو ایک وہ مقام حاصل تھا حفصہ رضی اللہ عنہ کو، یعنی وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور ماشاءاللہ ہر فن مولا تھی، بہت ساری چیزیں ان کو آتی تھی. ایون سب سے بڑھ کر جو کہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے خواتین میں اس دوران، جس وقت جو حالات تھے، کہ وہ لکھنا بھی جانتی تھی ماشاءاللہ، اور حافظ قرآن تھی، حارث قرآن تھی، عابدہ، زاہدہ، قاریہ کا لقب ان کو ملا، ادیبہ بھی کہا جاتا ہے ان کو، فصیحۃ البیان کہا جاتا ہے کہ ان کے الفاظ اتنے فصیح ہوا کرتے تھے، اور بلیغۃ الکلام، بہت ہی بلیغ کلام کہا کرتی تھیں، بہترین انداز میں بہترین الفاظ کا سلیکشن، اور لکھنا بھی جانتی تھیں، صاف گو تھیں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، لازماً ان میں بھی آئی ہوگی. جیسے عمر رضی اللہ عنہ بالکل بے باک تھے اور سچ بولنے والے تھے، ایسی حفصہ رضی اللہ عنہ بھی بالکل صاف کو تھی اور بے باک تھی. تیز ترار کا بھی ہم کو ملتا ہے کہ بہت یعنی شارپ مائنڈ جس کو کہتے ہیں نا، اور بے ساختہ بول دینا، وہ عادت بھی ان کے اندر تھی. کریمہ بنت کریم اور نبیلہ بنت نبیل حفصہ رضی اللہ عنہ، الگ الگ اسکالرس نے الگ الگ ان کو الحمدللہ خطابات سے نوازا ہے، اور الگ الگ ان کے نام دیے ہیں. بہرحال جتنی ان کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ تو وہ لوگ تھے جو صحابہ کے مرتبے پر فائز ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، اور پھر ام المومنین کا درجہ. سبحان اللہ، یہ تو ایک بالکل ہی یونیک اور بالکل ایک عجیب الگ بات ہے کہ اتنی ساری خواتین میں ان کو یہ درجہ ملنا، ان کو یہ شرف حاصل ہونا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنے اور ام المومنین کے درجے پر فائز ہوں، جو امت کی ماؤں کا لقب ملا ان کو، जो उम्मुहातुल मोमिनीन थी, एक्चुअली वो उम्मत की माएँ थीं। इतना बड़ा दर्जा और इतना बड़ा ऑनर हर एक के नसीब में नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला ने उनको ये दर्जा दिया। इनकी पैदाइश के बारे में हमें पता चलता है कि जिस वक्त हिजरे अस्वद नस्ब किया जा रहा था, जब काबतुल्लाह की तामीर की गई और हिजरे अस्वद का मसला दरपेश आया कि कौन इसे नस्ब करेगा, हर एक चाहता था कि मैं करूँ या हर कबीले वाला चाहता था कि हमारे कबीले वाले करें। उस वक्त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मसले को हल कर दिया, तो उसी वक्त हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई, यानी नबुवत के 5 साल पहले। इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी 40 साल की उम्र में आपको नबुवत मिली और 35 साल की उम्र में ये हिजरे अस्वद का मामला पेश आया था, तो उस वक्त हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो बड़ी हुई तो उसके बाद उनके वालिद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, और ये बात हमें पता चलती है कि उनकी शादी, एग्जैक्ट उम्र तो नहीं पता चलती कुछ कुछ किसी भी किताबों में, लेकिन ये बात हमें पता चलती है कि हिजरत मदीना से पहले उनका निकाह हो चुका था। और उनके हस्बैंड जो कि वो भी बहुत मशहूर सहाबी थे और अहले बदर में से थे, हम देखते हैं कि ये हबशे की तरफ हिजरत कर गए थे मक्का वालों के सताने की बिना पर। खुनैस बिन हुजाफा सहमी रदी अल्लाह अन्हो, ये उनका नाम था जिनसे उनका निकाह हुआ, हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा का। तो इनके बारे में हमें पता चलता है कि जब मक्का वालों ने जुल्म सतम की इंतहा कर दी और ज़मीन मुसलमानों पर तंग हो गई, तो अल्लाह के रसूल ने उनको हबशे की तरफ हिजरत करने का कहा। उस वक्त खुनैस रदी अल्लाह अन्हो हबशे की तरफ हिजरत कर गए, लेकिन उनका वहाँ दिल नहीं लगा, वो कुछ ही अरसे बाद वापस आ गए। वापस आने के बाद हमें पता चलता है कि उनका निकाह हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा से हुआ। फिर वहां पर भी हालत तंग ही रहे, तो तब अल्लाह के रसूल ने मदीना जाने की इजाजत दी, तो मदीना ये अपनी बीवी को साथ लेकर गए। और उसके बाद मदीना जाने के बाद जब ये वहां रहे और जंगे बदर का वाकया जब पेश आया, तो इन्होंने वहां बहुत ही जोश के साथ और बहादुरी के साथ जंग में हिस्सा लिया। कहा जाता है कि खुनैस रदी अल्लाह अन्हा को बहुत सारे जख्म आए, तो बहरहाल उनको उन्हीं जख्मों की वजह से बाद में उनकी वफात हो गई, खुनैस रदी अल्लाह अन्हा की। और जिस वक्त खुनैस रदी अल्लाह अन्हा की वफात हुई, उस वक्त हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा 18 साल की थी। ये तमाम ऑथेंटिक किताबों से ये बात हमें मिलती है कि जिस वक्त उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उस वक्त वो 18 साल की थी। तब आप खुद सोच लें कि 2 साल, 2 हिजरी में जंगे बदर हुई, फिर हिजरत करके वो लोग आए पहले एक डेढ़ साल पहले, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल शुरू में इनको इजाजत दे दी थी हिजरत करने की, और उससे पहले उनका निकाह हुआ था। तो इससे मालूम होता है कि तकरीबन 14 साल या 13 साल की उम्र में उनका निकाह हुआ होगा हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा का। 12 या 13 साल ज्यादा मुनासिब लगते हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर आयशा रदी अल्लाह अन्हा 9 साल की उम्र में रुखसत होकर आईं और हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा का निकाह 12 या 13 साल की उम्र में हुआ, तो उस जमाने में कम उम्र में निकाह करना कोई मायूब बात नहीं थी, क्योंकि अरब की आबो हवा में लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अलग ही ग्रोथ होती थी। जाहिर सी बात है गर्म गर्म मुल्क था, और हम सब जानते हैं कि वहाँ जो कसरत से जो चीज़ पैदा होती थी वह है खजूर। तो उसके बिना पर अलग अलग ममालिक का अलग अलग सारा मामला होता है, तो हमको इस पर एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतनी कम उम्र में शादी कैसे होती थी। तो ये वहाँ का उस वक्त का एक आम माहौल था, समझें। बहरहाल अपने शौहर के साथ हिजरत करके मदीना गईं, यानी इससे मालूम होता है कि हिजरत का शर्फ भी उनको हासिल हुआ, इतनी कम उम्र में उन्होंने हिजरत की। दूसरी तरफ जब वहाँ पर जंगे बदर का वाक़ पेश आया और जंगे बदर में उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ज़ख्म आए, और उन्हीं ज़ख्मों की वजह से जंगे बदर के बाद उनका इंतकाल हो गया। इधर उमर रदी अल्लाह अन्हु परेशान थे कि उनकी बेटी सिर्फ 18 साल की उम्र में बेवा हो गई हैं, तो वो ढूंढ रहे थे और वो चाहते थे कि कहीं अच्छी किसी अच्छे शख्स से कहीं उनका निकाह कर दिया जाए। उसी दौरान जैसे कि हम जानते हैं कि जंगे बदर के बाद उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की बीवी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया रदी अल्लाह अन्हा, उनका भी इंतकाल हो गया था। जब जंगे बदर से अल्लाह के रसूल वापस आए तो वो उनकी कब्र की मिट्टी ही बराबर कर रहे थे, तो उस उमर रदी अल्लाह अन्हु को ख्याल आया कि क्यों ना उस्मान रदी अल्लाह अन्हु से बात की जाए, क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजर रहे हैं जिस तरह से हफ्सा गुजर रही हैं। उनकी वाइफ का इंतकाल हुआ, इधर इनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ। उमर रदी अल्लाह ने सोचा कि चलो चलकर उस्मान रदी अल्लाह से बात करते हैं ताकि उनकी बेटी का दोबारा निकाह हो जाए ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। हफ्सा रदी अल्लाह के बारे में आता है कि जब उनके हस्बैंड की वफात हुई और उनको जख्म काफी आए थे खुनैस बिन हुजाफा रदी अल्लाह को, तो उन्होंने उनकी बहुत तीमारदारी की, जख्मों का इलाज किया लेकिन उनके जख्म मंदमिल ना हो सके, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद हफ्सा रदी अल्लाह खामोश खामोश रहने लगी और इबादत की तरफ उन्होंने ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। बहुत ज्यादा इबादत करने वाली थी और बहुत ज्यादा ही रोजेदार थी। सुभान अल्लाह, आप देखें कि आप उनकी नेकी का या उनके तकवा का आप इससे अंदाजा लगाएं कि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ उस वक्त भी वो रोजे से थी, बहुत ज्यादा ही कसरत से रोजे रखती थी, बहुत ज्यादा इबादत गुजारती, इसी बिना पर आबिदा के नाम से मशहूर हो गई थी, यानी इबादत करने वाली। और इसी तरह हम देखते हैं कि सिर्फ रोजे ही नहीं रखती थी बल्कि बहुत ज्यादा कसरत से कुरान की तिलावत भी करती थी, इसीलिए कारिया कहलाई। कह रहे थे कि जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात नाजिल होती थी, हफ्सा रदी अल्लाह उसको सुनकर याद कर लेती थी और एग्जैक्ट उसी तरह से याद करती थी जैसे अल्लाह के रसूल से सुनती थी, तो इसीलिए कारिया भी कहलाई। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिफा बिनत अब्दुल्ला, जो कि वहां पर उस वक्त एक अंसारी सहाबिया थी और वो लिखना जानती थी, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करके अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि तुम हफ्सा को लिखना सिखा दो। तो उन्होंने लिखना भी सीख लिया और लिखना भी जानती थी। तो आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त की सबसे वो इंटेलेक्चुअल पर्सन या टैलेंटेड या जो भी आप कहना चाहें कि उनको माशाल्लाह वो लिखने में, पढ़ने में, बोलने में हर तरह से माशाल्लाह वो आगे थी, यानी हरफन मौला आप कह सकते हैं जिनको। और फिर जाहिर सी बात है बेटी किसकी थी, खुद उमर रदी अल्लाह अन्हु भी जमाने जाहिलियत से लिखना पढ़ना जानते थे। फिर माशाल्लाह उमर रदी अल्लाह अन्हु बहुत ही ज्यादा जहीन, बहुत मामला फहम थे, इसी तरह से ये सब तमाम चीजें बेटी में भी आई थी, इसीलिए थोड़ी सी तेजी भी थी उनके अंदर। तो बहरहाल जब उनकी बेटी बेवा हो गई तो उमर रदी अल्लाह अन्हु को फिक्र लाहक हुई कि क्यों ना मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं ताकि वो खुशहाल रह सके। तो यही सोचकर उमर रदी अल्लाह अन्हु, कहा जाता है कि उस्मान बिन अफान रदी अल्लाह अन्हु के पास गए और उनसे जिक्र किया कि मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ और तुम्हारी क्या राय है, यानी उन्होंने खुल्लम खुल्ला साफ तौर से कह दिया कि मैं, यानी मेरी बेटी भी बेवा है और तुम्हारी भी बीवी नहीं है, लिहाजा अगर निकाह हो जाए तुम दोनों का तो कितना अच्छा हो। तो उस्मान रदी अल्लाह ने कहा कि मेरा भी निकाह करने का कोई इरादा नहीं है, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली इस तरह से कह दिया। यहाँ पर थोड़ी देर रुककर हम एक दो बातें डिस्कस करेंगे कि आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सादगी थी उस जमाने में और ऐसे होना चाहिए। और एक्चुअली यही सही तरीका है कि बेटी वाले रिश्ता देते हैं बेटे वाले को, बेटे वाले नहीं लेकर आते हैं बल्कि बेटी वाले रिश्ता देते हैं। तो इस्लामी तरीका यही है कि जिनके घर बेटी हो वो रिश्ता दें, क्योंकि उनको बात समझ में आनी चाहिए ना, क्योंकि इख्तियार तो उन्हीं को है, बहरहाल देने का इख्तियार बेटी वालों को है ना, क्योंकि बेटी उनकी है। तो बेटी वालों को ही कहना चाहिए, अगर वो मुनासिब समझते हैं किसी शख्स को, अपनी बेटी के काबिल समझते हैं तो वो खुद रिश्ता दें, बेटे वाले रिश्ता लेकर नहीं आएंगे। ये नॉन मुस्लिम्स का तरीका है कि बेटे वाले रिश्ता लेकर आते हैं और हमारे यहाँ पर उसका इतना चलन आम है कि हम तो तस्वुर ही नहीं कर सकते। अब अगर कोई बेटी वाले गलती से कह भी देते हैं तो कहते हैं हाय कितने बेशर्म और बेगैरत लोग हैं, खुद से अपने मुंह से अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं। यानी अब क्या कहें कि हर सही काम और अच्छा काम उल्टा हो गया है अच्छा हमारी नजरों में, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ रहते रहते हमने उन्हीं की आदतें, उन्हीं के रस्म रिवाज, उन्हीं के तौर तरीके सीख लिए। तो बहरहाल एक बात ये मालूम हुई हमको कि बेटी वाले भी रिश्ता दे सकते हैं और बेटी वालों ने ही रिश्ता देना चाहिए। बेटी वाले ही कहे कि हमें मुनासिब लगता है आपके बेटे के साथ रिश्ता करना, अगर आप राजी हैं तो हम बात आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से बात करने में कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि लड़की के वालिद ने खुद कहा उस्मान रदी अल्लाह अन्हु से, इससे एक और बात पता चलती है कि अगर लड़की के वालिद या लड़की की वालदा कहें तो इसमें भी कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इस्लामी तरीका है। और फिर उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने किस तरह से क्लियरली ये कह दिया कि मैं भी शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हो सकता कुछ उनकी उसकी वजूहत रही हों, वो बाद में पता चलती हैं। और दूसरी बात एक और हमें पता चली कि लड़की अगर बेवा हो जाए या लड़की के हस्बैंड का इंतकाल हो जाए तो फौरन दूसरे निकाह की फिक्र करनी चाहिए। आज हमारे यहाँ हमारे माशरे में इसको इंतहाई मायूब समझा जाता है। कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जो ऐसे ही उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी, क्योंकि हमारे यहाँ पर उसको मायूब समझा जाता है, लिहाजा दूसरी शादी करते ही नहीं है लड़की की। बेचारी पूरी ज़िंदगी वो इसी तरह से गुजार देती है, बेवगी में, या अगर तलाक हो गई है तो तलाक की हालत में, दूसरा निकाह नहीं किया जाता उसका। तो ये मायूब बात है, बल्कि ये उल्टा इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम तो हमें इजाज़त देता है, बल्कि प्रमोट करता है और हमें बढ़ाता है इस मामले में आगे कि बेवा औरतों का निकाह करो। ये हिंदुआना सोच है कि बेवा एक बार हो जाए तो उसके बाद दोबारा निकाह करना गुनाह का काम है, तो ये कोई नेकी वाली सोच नहीं है। तो बहरहाल खुद वालिद ने हफ्सा रदी अल्लाह अन्हो के निकाह की बात की, लेकिन उस्मान रदी अल्लाह अन्हो ने किसी तरह से इनकार कर दिया, तो इस बात को उमर रदी अल्लाह अन्हो ने अपने दिल पर ले लिया, यानी उन्हें ये बात थोड़ी सी नागवार गुजरी। अब उसके बाद वो वहां से अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो के पास आए, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो से कहा, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं जवाब देता हूँ सोचकर, या वो खामोशी उन्होंने इख्तियार की। बाज़ रिवायत से पता चलता है उन्होंने कहा सोच के जवाब देता हूँ, और बाज़ रिवायत से पता चलता है कि वो खामोश हो गए। और उमर रदी अल्लाह अन्हो इंतजार करते रहे कि अबू बकर सिद्दीक अब जवाब देंगे कि तब जवाब देंगे। उनसे भी वो नाराज़ हो गए, फिर अबू बकर सिद्दीक से। उसके बाद वो थोड़े से नाराज नाराज हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस्मान से कहा, उस्मान ने भी मना कर दिया, मैंने अबू बकर सिद्दीक से कहा, वो भी खामोश हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस ये कोई अहादीस से नहीं पता चलता, ये सीरत से पता चलता है, सीरत की किताबों में ये जुमला नकल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उस्मान को हफ्सा से बेहतर बीवी मिलेगी और हफ्सा को उस्मान से बेहतर शौहर मिलेंगे, या अल्लाह ताला ने हफ्सा के लिए उस्मान से बेहतर फैसला किया और हफ्सा के लिए उस्मान के लिए हफ्सा से बेहतर और हफ्सा के लिए उस्मान से बेहतर फैसला किया है। और जब उमर रदी अल्लाह अन्हो इस बात को समझे तो वो बहुत खुश हुए, यानी उस्मान रदी अल्लाह अन्हो चूँकि गमगीन रहने लगे थे कि अल्लाह के रसूल की बेटी उनके जो निकाह में थी उसका इंतकाल हो गया है और अब वो खास नस्बत उनको नहीं रही अल्लाह के रसूल से, लिहाजा अल्लाह के रसूल ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह उनसे कर दिया, उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह अन्हा का। इसी बिना पर उस्मान रदी अल्लाह अन्हो जुन्नूरैन कहलाए, और इसी तरह से हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह के लिए आपने खुद उमर रदी अल्लाह अन्हो से कहा, जिस पर उमर रदी अल्लाह अन्हो बहुत खुश हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये निकाह हुआ और हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन का शर्फ उन्होंने हासिल कर लिया हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा ने, और वो अजवाज मुतहरात में शामिल हो गईं। खुद आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मुझसे मुकाबला करने में सिर्फ हफ्सा ही कभी कभी आगे होती थी, अदरवाइज देखा जाए तो यानी मुकाबला ये नहीं कि एक दूसरे से दुश्मनी, मुकाबला मतलब एक तरह से कंपटीशन कि जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, यानी आप ही के बराबर का दर्जा मेरा भी है, ऐसा उनका यानी उनकी सोच ऐसी थी हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा की, क्योंकि वो समझती थी कि जैसे अबू बकर सिद्दीक हैं ऐसे ये उमर रदी अल्लाह अन्हु भी हैं, दोनों बाजू थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उनको इस बिना पर मुकाबला होता था कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। और उमर रदी अल्लाह अन्हु ने निकाह करते वक्त ये कहा था रुख्सत करते वक्त कि देखना बेटी आयशा से मुकाबला ना करना, उसके वालिद कुछ और है और तुम्हारे वालिद वैसे नहीं है, यानी अबू बकर सिद्दीक का मुकाम मर्तबा कुछ और ही है, तो लिहाजा तुम आयशा से दौड़ना लगाना या आयशा से मुकाबला ना करना, ये उमर रदी अल्लाह अन्हु ने पहले ही कह दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी बशरी तकाजों के बिना पर ऐसा हो जाता था कि उनको ये लगता था कि मैं भी आयशा रदी अल्लाह अन्हा के बराबर ही हूँ, लेकिन वो उस ग्रुप में शामिल थी, यानी अजवाज मुतहरात के देखा जाए तो यानी दो तरफ लोग थे, कुछ अजवाज मुतहरात एक इसमें शामिल थी यानी जिनका मिजाज मिलता था, समझे, नहीं ये नहीं कि उन्होंने एक ग्रुप बंदी कर ली थी, जिनके मिजाज ज्यादा मिलते थे आपस में तो वो एक यानी उनकी ज्यादा जमती थी, और आयशा रदी अल्लाह अन्हा ही से मुतसर इनका हुजरा था, हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा का, सौदा रदी अल्लाह अन्हा का भी हुजरा वहीं था, तो लिहाजा ये तीनों हुजरे नज़दीक थे, लिहाजा ये तीनों की ज्यादा जमती थी। सफिया रदी अल्लाह अन्हा भी इसमें शामिल थी, और दूसरी तरफ जैनब बिनत जहश, उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा, मैमूना रदी अल्लाह अन्हा, ये तमाम शामिल थी, उनके हुजरे नज़दीक नज़दीक थे, तो बहरहाल ये सब साथ ही में थी। और देखा जाए तो तमाम ही अज़वाज मुतहरात एक दूसरे का बहुत ज्यादा एहतराम, एक दूसरे की बहुत ज्यादा इज्जत करने वाली थी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आयशा रदी अल्लाह पर इल्ज़ाम लगा तो सबसे पहले उसका इनकार जैनब बिनत जहाश ने ही किया, यानी उन्होंने ये गवाही दी कि मैंने आयशा में सिवाय भलाई के कुछ नहीं देखा। तो आपस में माशाल्लाह इन लोगों की वैसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इंसान होने के नाते कभी कभी कुछ हो जाता है ना, जाहिर सी बात है कि ये तमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थीं। हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा बहुत ज़्यादा इबादत करती, बहुत रोज़े रखती और नेकी के कामों में आगे आगे रहती। एक दफ़ा का जो वाक़िया हमको मिलता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ये बात इरशाद फरमाई कि जो बैत रिजवान में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था वो सब के सब जन्नती हैं, उनमें से कोई भी जहन्नुम में नहीं जाएगा। जब हफ्सा रदी अल्लाह ने सुना तो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल ये कैसे हो सकता है, और आप ये सुनकर थोड़े से गुस्से में आ गए और हफ्सा रदी अल्लाह को डांट दिया। हफ्सा रदी अल्लाह ने कहने लगे कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है कि वह इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से कोई ऐसा नहीं जो जहन्नम पर वारिद ना हो। ये बात सुनकर अल्लाह के रसूल ने दूसरी आयत पढ़ी और कहा कि सुम्मा नुनज्जी अल्लज़ीन तक्व व नज़रु ज़ालिमीन फीहा, फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो दुनिया में मुत्तकी थे और जालिमों को उसमें गिरा हुआ छोड़ देंगे। तो उस वक्त बाज़ लोगों ने कहा कि जब हफ्सा रदी अल्लाह ने उन्होंने डांट दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक और वाक़या पेश आया था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात की थी अपनी बीवी से और वो बात उन्होंने आयशा रदी अल्लाह से कह दी। तो बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि वो हफ्सा रदी अल्लाह थे जिनसे बात कही गई थी, और हफ्सा रदी अल्लाह ने वो बात आयशा रदी अल्लाह से कह दी। तो ये बाज़ मुफस्सरीन का ख्याल है, कोई सही हदीस से हमें ये बात नहीं पता चलती है। और इमाम बुखारी कहते हैं कि एक्चुअली ये आयत तखीर का वाक़या था जिसमें अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को थोड़ा सा सरजनिश की थी कि तुमने एक राज हमारे नबी ने तुमसे एक राज की बात कही, और जब उसने दूसरी को खबर दे दी और अल्लाह ने नबी पर इस वाक़े को जाहिर कर दिया तो नबी ने उस बीवी को उसका कसूर कुछ बताया और कुछ नहीं बताया। उसने अर्ज की कि आपको ये किसने बताया, तो आपने फरमाया मुझे अलीम खबीर यानी अल्लाह ताला ने बताया। तो बहरहाल वो कहते हैं कि ये तहरीम का ही वाक़ा है, शहद का वाक़ा है, और दूसरी जो बातें बताई जाती है वो सभी अनऑथेंटिक और गलत हैं। तो बस इतना वाक़ा हुआ था, और उमर रदी अल्लाह अन्हु दौड़े दौड़े फिर अल्लाह के रसूल के पास गए, क्योंकि ये खबर मदीना में आम हो गई थी कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है, और कुछ लोगों ने कहा कि खुसूसन हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा को तलाक दी है। बाजी वैसे पता चलता है कि सौदा रदी अल्लाह अन्हा को दी थी आपने। लेकिन जब जो उमर रदी अल्लाह अन्हा का वाक़ा हमें ज्यादा ऑथेंटिक लगता है कि जब वो गए और अल्लाह के रसूल से पूछने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसी दौरान इत्तेफाक से आप घोड़े पर से गिर गए थे और आपके पैर में चोट आई थी, तो आप बालाखाने में चले गए जो कि आयशा रदी अल्लाह अन्हा के हुजरे से लगकर ऊपर एक कमरा था, और आपने उसी वक्त ईला भी किया जिसमें आप अपनी बीवियों से 1 महीने के लिए नाराज होकर आपने कसम खाई थी कि आप उनसे जिस्मानी ताल्लुक नहीं रखेंगे, और वो इसी बिना पर के सब अजवाज मुतहरात ने आपसे तकाजा किया था कि हमारा गल्ला बढ़ाया जाए, हमारा खर्चा बढ़ाया जाए। अबू बकर सिद्दीक और उमर रदी अल्लाह ने आकर अपनी बेटियों को समझाया तो उनकी बेटियां इस बात से पीछे हट गई थी, यानी उन्होंने तकाजा नहीं किया, यानी आयशा रदी अल्लाह और हफ्सा रदी अल्लाह ने तकाजा नहीं किया, लेकिन दूसरी बीवियां उन्होंने उमर रदी अल्लाह से कहा कि तुम हमारे घरेलू मामलों में भी दखल दे रहे हो, लिहाजा उमर रदी अल्लाह खामोश हो गए। तो उस बिना पर नाराज होकर अल्लाह के रसूल ने बालाखाने पर क़याम किया 1 महीने के लिए। तो ये तमाम वाक़ये उसी दौरान में पेश आए। तो कुछ लोगों ने मशहूर कर दिया कि हफ्सा रदी अल्लाह को तलाक हो गई, किसने कहा कि सौदा रदी अल्लाह को, और किसने कहा कि तमाम अजवाज मुतहरात को आपने तलाक दे दी। किसी के पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो उमर रदी अल्लाह कहते कि मैं गया और मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है, आपने कहा कि नहीं, तो कहते कि मैं इतनी खुशी से चिल्ला उठा और सब ने तकबीर का नारा लगाया अल्लाहु अकबर जब मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी है। तो बहरहाल इससे मालूम होता है कि तलाक नहीं दी थी आपने, हो सकता है आप देने का इरादा कर रहे हों, तो सिर्फ नाराज होकर आप बैठ गए थे, तलाक का आपने इरादा नहीं किया था। और अगर तलाक दी भी होगी तो हो सकता है कि एक तलाक दी हो, लेकिन हमें इसका कहीं कोई ऑथेंटिक रिवायत में हमें कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता कि अल्लाह के रसूल ने तलाक दी हो, क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद फरमा चुका है कुरान में कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये इन औरतों ने आपके साथ रहना और इसी तरह से रहना गवारा कर लेने, इन्होंने आखिरत को चुना है, तो अब आपको इख्तियार नहीं कि आप इन्हें छोड़ सकें, यानी अब अल्लाह के रसूल को ये इख्तियार नहीं था कि आप उन अजवाज मुतहरात को छोड़ दें, ये तलाक दे दें, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसला था। तो इससे मालूम होता है कि तलाक की सिर्फ खबर मशहूर हुई थी, आपने तलाक दी नहीं थी। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है। तो उस वक्त फिर अगर हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा को तलाक दी भी थी तो वो तलाक रजई होगी, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं। लेकिन जहां तक हमें उमर रदी अल्लाह अन्हा के वाक़े से पता चलता है, वहां से ये बात हमें महसूस होती है कि नहीं, तलाक नहीं दी थी। तो बहरहाल एक हदीस हमें मिलती है हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा की फजीलत पर, इब्ने माजा और अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया है कि जिब्रील अमीन आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अन्नहा सवामा कवामा वहिया जौजु तो कल जन्नत फिल जन्ना, अन्नहा सवामा कवामा वहिया जौजतु का फिल जन्ना, कि बिलाशुबा वो रोजेदार और इबादत गुजार है और वो जन्नत में आपकी बीवी होगी। सुभान अल्लाह, आप देखें कि ये हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा की फजीलत के खुद जिब्रील अमीन ये कह रहे हैं आकर के वो रोजेदार और कयाम करने वाली हैं, अल्लाह के नजदीक उनका बहुत ही बुलंद मुकाम और मर्तबा है और वो जन्नत में भी आपकी बीवी होंगी। तो ये उनकी फजीलत हमें मिलती है हदीस से हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका तकवा और उनका इल्म, उसमें भी वो सबसे नुमाया नजर आती हैं माशाल्लाह। और उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु का दौर और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का दौर, खिलाफत का जो दौर गुजरा उसमें भी उनका इल्मी मुकाम मर्तबा अपनी अलग एक पहचान रखता था। उमर रदी अल्लाह ने खुद उनसे एक दफा सवाल किया था, फिक्की सवाल अक्सर वो हफ्सा रदी अल्लाह से करते थे, यानी कुछ खवातीन से रिलेटेड अगर मसाइल होते तो उन्होंने पूछा था कि एक औरत शादी, जो शादीशुदा औरत है, शादी के बाद अपने शौहर से कितने दिन दूर रह सकती है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि 4 से 6 महीने तक के। इसी बिना पर उमर रदी अल्लाह उन्होंने फैसला किया था कि जो भी मुजाहिदीन होंगे, जो जंग पर गए हुए हैं, 6 महीने के बाद उनको वापस भेज दिया जाए उनके घरों पर। और हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा लिखना जानती थी, पढ़ना जानती थी, कुरान की हाफिजा थी और बहुत ही उम्दा लहजे में कुरान की तिलावत किया करती थी। और उनको स्कॉलर्स ने उनको आलिमा, फाजिला, मुत्तकी, परहेजगार लिखा है। और उस जमाने में तो बहुत सारे मर्दों में भी ये लिखने की सलाहियत नहीं होती थी जो कि हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा को हासिल थी माशाल्लाह। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुझसे सबसे पहले वो मिलेगी जिसके हाथ लंबे होंगे। तो आयशा रदी अल्लाह अन्हा हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा कहती कि हम आपस में एक दूसरे के हाथ नापा करते थे कि किसका हाथ ज्यादा लंबा है। तो हमेशा लंबाई में सौदा रदी अल्लाह अन्हा का हाथ ज्यादा लंबा निकलता था, लेकिन एक्चुअली जब जैनब बिनते जहश का इंतकाल हुआ तो तब हमने समझा कि इससे मुराद ज़ैनब बिनते जहश थी और उससे मुराद दरअसल उनकी सखावत थी, यानी अल्लाह की राह में देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी उनका वही हाल रहा। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब कुरान लिखा गया और कुरान को एक जिल्द में जमा किया गया जिसका नाम मुसहफ़ उम्र रखा गया था, क्योंकि अभी तक क्या था कि कुरान मुख्तलिफ तख्तियों पर और पत्थरों पर लिखा हुआ था। जब उमर रदी अल्लाह अन्हु के कहने पर अबू बकर सिद्दीक ने ये लिखवाने का इंतजाम किया और जैद बिन साबित उसके जिम्मेदार थे रदी अल्लाह अन्हु, तो उस उमर रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद वो सहीफा जो कि पहला कुरान था समझे लिखा हुआ एक जिल्द में, वो लिखा हुआ कुरान हफ्सा रदी अल्लाह अन्हु के पास दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था माशाल्लाह। तो इसी बिना पर अबू बकर सिद्दीक ने खुद ये फैसला किया था कि ये हफ्सा के पास रखवाया जाए। जब उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कुरान पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आने लगी और लोग गलत सलत कुरान पढ़ने लगे, तब उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने उनसे इंतहाई अदबाना गुजारिश करके उनसे वो नुस्खा मंगवाया, उसको सामने रखकर फिर दूसरे 7 कुरान लिखे गए, 7 कॉपीज बनाई गई उसकी, कुरैश के तरीके पर, कुरैश की रस्म अल-ख़त पर लिखवाए गए कुरान, और वो 7 कॉपीज और साथ में पढ़ने वाले मुख्तलिफ इलाकों में भेजे गए। तब भी कुरान हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा के पास ही रखा हुआ था। उसके बाद मरवान बिन हकम जिस वक्त मदीने का गवर्नर था और उनका जब इंतकाल हुआ हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा का, तो उस वक्त फिर मरवान बिन हकम ने वो नुस्खा अपने पास मंगवा लिया और इस तरह से उसके बाद फिर वो हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा के पास नहीं रहा। और जब तक हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा के पास वो नुस्खा था कुरान का, इसी दिन को हारिसतुल कुरान कहा जाता है, यानी कुरान की मुहाफिजा। तो जब भी कोई लोग आते बाहर से, कोई डेलीगेशन आते या कोई और लोग आते कुरान के बारे में पूछने के लिए, तो वो कुरान निकाल कर दिखाया करती थी। उन्हीं के पास वो कुरान था और वो इतनी बड़ी जिल्द में था कि उसको किसी इसमें, यानी कोई ऐसी कोई बुक शेल्फ नहीं थी रखने की, क्योंकि बहुत लंबा और बहुत चौड़ा और बहुत मोटा था वो, क्योंकि इतना पतला पेज तो होता नहीं था उस ज़माने में, इतना महीन सा। तो बहरहाल उसको एक शायद घड़े में जो जैसे पानी के घड़े होते हैं ना हमारे यहाँ, उसमें रखा गया था, वल्लाहु आलम। तो हफ्सा रदी अल्लाह के पास, तो माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा एजाज है जो एक खातून को हासिल है। आप देखें कि इस्लाम में हमें ये बात पता चलती है, हमारे दीन में, कि इसमें खवातीन हर मामले में आगे हैं, माशाल्लाह नुमाया हैं, पेश पेश हैं। पहली शहीद खातून सुमैया रदी अल्लाह, पहली इस्लाम कबूल करने वाली खातून खदीजा रदी अल्लाह, और पहला जिसका माल खर्च हुआ इस्लाम की राह में पहली दफा, वो भी एक खातून थी, और जिनके पास कुरान रखवाया गया वो भी एक खातून थी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि खवातीन को कितना नुमाया मुकाम दिया गया इस्लाम में, और कितनी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके थ्रो करवाई गई या उनके पास रखवाई गई। यानी इतने बड़े सहाबे कराम में से किसी के भी पास कुरान रखवाया जा सकता था, लेकिन एक खातून के हिस्से में ये शर्फ उनको हासिल हुआ माशाल्लाह, और वो भी हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा को, उनके लिखने और पढ़ने की वजह से। शिफा बिनते अब्दुल्ला से उन्होंने लिखना सीखा था, तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए, हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा के लिए, कि उनके पास कुरान रखवाया गया और उनके इंतकाल तक वो कुरान उन्हीं के पास था, एक खातून के पास रखवाया गया। आप सोचें कितना बड़ा ऑनर और कितना बड़ा मुकाम उनको मिला, हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा को, और वो हारिसतुल कुरान कहलाईं। जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ वो 41 हिजरी थी, यानी 41 हिजरी थी, और कुछ दिन वो बीमार रहीं। उसके बाद चंद ही दिन गुजरे थे कि उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त मदीना के गवर्नर मरवान बिन हकम थे, उन्होंने नमाज पढ़ाई, नमाज जनाजा। अबू हुरैरा और अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह उन्होंने जनाजे को कंधा दिया, और उनके जो भाई और भतीजे थे यानी अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु, और उनके दूसरे भाई अब्दुल्ला और आसिम, ये दोनों भाई और भतीजे सालिम, अब्दुल्ला और हमजा, ये तीनों कब्र में उतरे और उन्होंने कब्र में दफन किया। जिस वक्त इंतकाल हुआ उस वक्त उनकी उम्र 63 थी, 63 साल थी, और उन्होंने अपना यानी ज़्यादातर माल तो सदका कर दिया था, और अपने भाई को वसीयत की थी कि मेरा फुला फुला माल सदका और खैरात कर देना। और जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, बहुत ही इसार और कुर्बानी वाली ज़िंदगी गुजारी, इबादत के साथ ज़िंदगी गुजारी। और फिर जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ उस वक्त भी वो रोज़े से थीं। अबू नहीं अस्फहानी उनके बारे में लिखते हैं कि रोज़ेदार, इबादत गुजार, अपने आप को मलामत करने वाली, अपने आप को कसूरवार, यानी अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया करती थी वो, और अपने आप को मलामत करने वाली, यानी अपने आप को बार बार मलामत भी करती रहती थी कि तुमसे ये गलती हो, कि लिहाजा ये नहीं करना चाहिए था। तो सैयदा हफ्सा बिनते उमर बिन खत्ताब, जिनको कुरान की विरासत का शर्फ हासिल हुआ और किताब इलाही को जमा करने वाली माशाल्लाह, और जिनके बारे में हमें हदीस में मिलता है कि इन्ना सवाम कवामा वही जोजतु का फिल जन्ना, अल्लाह ताला उनसे राजी और वो अपने रब से राजी। अल्लाह ताला हमें उन लोगों से मिलवाए जन्नत में जिन पर अल्लाह ताला की दुनिया में ही रहमतें हुई और दुनिया में ही अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रदी अल्लाह अन्हा, इनकी बहुत मुख्तसर सीरत है, लिहाजा हम इनको भी देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त नबुवत मिली उससे 13 साल पहले ये पैदा हुई मक्का में, और अल्लाह ताला ने उनको उम्मुल मोमिनीन का शर्फ दिलवाया। जिस वक्त ये मक्का में पैदा हुई उस वक्त अभी अल्लाह के रसूल को नबुवत नहीं मिली थी। इनका ज़माने जाहिलियत से एक लकब था मशहूर, उम्मुल मसाकीन के नाम से जानी जाती थी, यानी ये मिसकीनों की और मोहताजों की बहुत मदद किया करती थी। पहले से ही कहा जाता है कि वो गरीबों की मदद करती, जिसकी बिना पर लोगों ने उनको ये दर्जा या ऑनर दिया था कि उनका नाम उम्मुल मसाकीन पड़ गया था, यानी मिसकीनों की माँ। जिस वक्त इस्लाम के बारे में इनको पता चला, उन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल की, यानी साबिकून अलवलून में इनका शुमार होता है, बिल्कुल शुरू के लोगों ने जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उसी में ये इस्लाम कबूल करने वाली थी। बहुत ही मशहूर खानदान से ताल्लुक रखती थी, और जैसे जैसे इस्लाम आगे बढ़ता गया इनके ईमान में और पुख्तगी आती गई, ये वालदा की तरफ से उम्मुल मोमिनीन मैमुना रदी अल्लाह अन्हा की बहन थी। ठीक है, वालदा की तरफ से, नहीं जैसे होता ना कि एक माँ की बहुत सारी औलादें होती हैं, बाप मुख्तलिफ होते हैं, तो इनकी बहन होती थी मैमुना रदी अल्लाह अन्हा वालदा की तरफ से। इनके इनका पहला निकाह अब्दुल्ला बिन जहाश से हुआ, और बाज लोग कहते हैं कि इससे पहले वाला निकाह तुफैल बिन हारिस से हुआ था और उसके बाद अब्दुल्ला बिन जहाश से हुआ, वल्लाहु आलम। लेकिन बहरहाल ज्यादा जो हमें रिवायत मिलती है कि अब्दुल्ला बिन जहाश इनके शौहर थे जो कि जंगे उहद में शहीद हो गए। इमाम ज़हबी इनके बारे में लिखते हैं कि ज़ैनब बिनत खुज़ैमा के शौहर अब्दुल्ला बिन जहश जंगे उहद में शहीद हो गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। और ये भी कहा जाता है कि वो तुफैल बिन हारिस की बीवी थी, उनसे कोई भी हदीस मरवी नहीं है। उनको उम्मुल मोमिनीन का जिस वक्त शर्फ हासिल हुआ जब उनके शौहर जंगे उहद में शहीद हो गए, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त जंगे उहद के बाद बहुत सारे घरों में बहुत सारी औरतें बेवा हो गई थी और बहुत बच्चे यतीम हो गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा खातून की मदद के तौर पर, और ये भी अल्लाह ताला का फैसला था क्योंकि जिनसे भी निकाह आपने किए वो सब के सब अल्लाह ताला की मर्जी से आपने किए, तो चूंकि आपको देखकर ही तमाम सहाबे कराम भी ये कदम उठा सकते थे कि जो इतनी औरतें बेवा हो गई हैं उनसे किसी ना किसी को तो निकाह करना था ताकि उनका घर बार चल सके और वो एक हिफाजत में रह सकें। तब अल्लाह के रसूल ने इनको निकाह का पैगाम दिया। जब वो अपनी इद्दत से उनकी इद्दत खत्म हुई तब अल्लाह के रसूल ने उनको निकाह का पैगाम दिया, और फिर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आ गईं। और कहा जाता है कि आयशा रदी अल्लाह और हफ्सा रदी अल्लाह से मुत्तसल जो हुजरा था उसमें इनको रखा गया, यानी वहीं एक छोटा सा कमरा बना दिया गया, और ये अग्ध होने के बाद वहां पर आ गईं, उस हुजरे में आ गईं। तो लिहाजा इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का शर्फ हासिल हुआ, यानी उम्मुल मोमिनीन कहलाईं। 400 दरहम मेहर मुकरर हुआ और आयशा और हफ्सा रदिया के हुजरे के साथ में इनका हुजरा बनाया गया। मिस्कीनों के साथ उनकी जो शफ़क़त और रहमदिली थी वो इस्लाम से पहले से थी, लेकिन इस्लाम लाने के बाद उसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुरान में ज़्यादातर जो आयतें नाजिल हो रही थी वो मिस्कीनों की मदद करने के ताल्लुक से थी। लिहाजा वो हर वक्त कोशिश ये करती थी कि जो भी कुछ उनसे हो सकता था फ़ुक्र और मसाकिन की मदद करने की कोशिश करती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फ़कीरों और मिस्कीनों से बहुत ज़्यादा शफ़क़त से पेश आते थे। जब वो अल्लाह के रसूल के फरमान सुनती तो और ज़्यादा उनके शौक़ में इजाफा होता और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती। इनके बारे में आता है कि इनके ताल्लुक से किसी के दिल में कोई रंजिश या कोई भी, इन्हें कहना चाहिए ना कि एक जो होता है फितरी तौर पर, किसी को इनके इनसे कोई शिकायत नहीं हुई ना इनको किसी से कोई शिकायत हुई। और इसमें एक वजह हमें यह भी नज़र आती है कि ये ज़्यादा देर रही नहीं, यानी बाज़ रिवायत के मुताबिक 3 महीने और बाज़ रिवायत के मुताबिक 8 महीने, यानी ये सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह होने के बाद 8 महीने उनके साथ रहीं, या 3 महीने उनके साथ रहीं, 3 महीने या 8 महीने के बाद इनका इंतकाल हो गया। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नतुल बकी में दफन किया अपने हाथों से और उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 2 बीवियाँ आपकी वफ़ात पाईं, एक खदीजा रदिया अन्हा और दूसरी ज़ैनब बिनत खुज़ैमा। कहा जाता है कि ये घर में बहुत ज़्यादा इबादत करती थी, इबादत गुजार थी, रोज़े रखती थी, क़यामुल लैल में अपना वक्त गुजारती थी रात में, और चंद ही माह गुजरे थे कि इनकी वफ़ात हो गई। जब इनकी वफ़ात हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रदिया अन्हा की याद आ गई और आपने खुद इनको अपने हाथों से दफन किया। इनका लकब उम्मुल मसाकीन था और उनसे कोई हदीस बयान नहीं की गई। इमाम ज़हबी लिखते हैं कि उन्होंने कोई हदीस नहीं बयान की। अल्लामा इब्नुल जौज़ी कहते हैं कि हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते कि उन्होंने कोई हदीस बयान की हो, और ये बात मालूम होती है कि वो अपना अक्सर वक्त मसाकीन की देखभाल में बसर किया करती थी। तबरानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि उम्मुल मसाकिन वफात पा गई जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जिंदा थे और आपके साथ बहुत थोड़ा अरसा रहीं। इससे मालूम होता है कि 3 या 8 महीने वो रहीं और मिस्किनों को वो बहुत प्यारी थी क्योंकि वो उनकी बहुत मदद किया करती थी, इसी बिना पर उनका लकब उम्मुल मसाकिन हुआ और उनका इंतकाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो गया। अल्लाह ताला उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.